एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, श्रोताओं का स्वागत। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी छोटी सी किताब उठा रहे हैं जिसने वाकई दुनिया बदल दी, बहुत शक्तिशाली।
हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी पुस्तिका जिसने ना सिर्फ एक देश की बल्कि शायद पूरी दुनिया में आज़ादी की सोच को एक नई दिशा दी।
हम बात कर रहे हैं थॉमस पेन की कॉमन सेंस की। मैं हूँ आपकी साथी इस ज्ञान यात्रा में।
और मैं भी हूँ आपके साथ। और कमाल की बात यह है, जैसा आपने कहा, ये कोई मोटी किताब नहीं है, महज एक पैंफलेट।
हाँ,
लेकिन इसके शब्दों में वो ताकत थी, वो चिंगारी थी जिसने अमेरिकी क्रांति की आग को हवा दे दी।
और आज भी, मतलब करीब 250 साल बाद भी, है ना, जब हम अपनी सरकारों पर, व्यवस्था पर, अपने अधिकारों पर सवाल करते हैं, तो पेन के तर्क कहीं ना कहीं याद आ जाते हैं।
ते साफ सीधी जोशीली बातें आम लोगों को भी बड़े बदलाव के लिए खड़ा कर सकती हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये सबूत है कि सही समय पर कहे गए शब्द वो सोई हुई कौम को जगा सकते हैं।
तो चलिए समझते हैं कि कौन थे ये थॉमस पेन और क्या था उनकी कॉमन सेंस में इतना खास।
तो थॉमस पेन 1737 से 1809 तक इंग्लैंड में जन्मे थे, पर दिल से तो वो क्रांतिकारी ही थे।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि जिस आदमी ने अमेरिका को आज़ादी का रास्ता दिखाया, उसका अपना शुरुआती जीवन इंग्लैंड में काफी उथल पुथल वाला रहा।
हाँ, क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ऑर्सेट बनाने वाले, टैक्स कलेक्टर, टीचर।
जी, और ज्यादातर में मतलब कामयाबी नहीं मिली, नाकामी ही हाथ लगी।
फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक सिफारिशी चिट्ठी वो लेकर 1774 में अमेरिका पहुंचे।
और वो भी ठीक उस समय जब ब्रिटेन और अमेरिकी कॉलोनियों के बीच तनाव एकदम चरम पर था।
शायद उनका ये बाहरी होना ही काम आ गया, वो न तो कोई बड़े जमींदार थे, न वकील,
न ही सत्ता से जुड़े थे, वो आम आदमी की नजर से देख रहे थे चीजों को।
उन्होंने इस झगड़े को सिर्फ अंग्रेजों का आपसी मसला नहीं माना।
नहीं, उन्होंने इसे मानवाधिकारों का, स्वतंत्रता का, एक तरह से कहें तो पूरी दुनिया का संघर्ष माना।
और इंग्लैंड में उन्होंने जो देखा था वो वर्ग भेद, अमीरी गरीबी, उसने उन्हें राजशाही और खानदानी हुकूमत से नफरत करना सिखा दिया था।
बिल्कुल, और उनकी असली प्रतिभा यही थी, सरकार, अधिकार, आजादी, ये सब भारी भरकम विचार हैं।
हाँ,
लेकिन उन्होंने इसे इतनी सरल, सीधी और दमदार भाषा में कहा
कि सब समझ सकें, किसान, कारीगर, व्यापारी, पढ़े लिखे लोग।
हाँ, उन्होंने सबके लिए लिखा, किसी एक क्लास के लिए नहीं।
और यही कॉमन सेंस का जादू था।
जनवरी 1776 में छपी गुमनाम।
गुमनाम, और सिर्फ 47 पन्ने, लेकिन इसने हंगामा खड़ा कर दिया।
मकसद एकदम साफ था, जो आम अमेरिकी लोग अभी भी ब्रिटेन के राजा के वफादार थे
या फिर क्रांति के नाम से ही डरते थे,
हाँ, उन्हें आजादी के लिए तैयार करना, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर लोग तो सुलह ही चाहते थे, सोचते थे भाई इतनी बड़ी ब्रिटिश आर्मी से कौन लड़ेगा।
तो पेन का काम था इस डर को तोड़ना, वफादारी की जंजीरों को काटना,
और ये समझाना कि आजादी सिर्फ मुमकिन ही नहीं बल्कि जरूरी है, नैतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से भी।
सही कहा, पेन ने एक एक करके सुलह के सारे तर्क काटे और आजादी के पक्ष में एक मजबूत केस बनाया, तार्किक भी, भावनात्मक भी।
उन्होंने लोगों की सोच बदली, उन्हें ये एहसास दिलाया कि भाई तुम सिर्फ हक मांगने वाले लाचार लोग नहीं हो
बल्कि एक नया आजाद देश बनाने वाले हो।
और इसके लिए उन्होंने कोई भारी भरकम कानूनी भाषा इस्तेमाल नहीं की।
नहीं, बाइबल के हवाले दिए, रोजमर्रा की मिसालें दी,
और भाषा सीधी दिल पर असर करने वाली, ये पाठक को जैसे हाथ पकड़कर एक सफर पर ले जाती है।
हाँ, बुनियादी उसूलों से शुरू करके
सीधे एक्शन की अपील तक कि अब उठो, कुछ करो।
तो चलिए इस सफर को थोड़ा और पास से देखते हैं। शुरुआत में ही पेन माहौल बना देते हैं, ना?
बिल्कुल, वो कहते हैं भाई बहस का टाइम गया, अब फैसले का वक्त है।
और ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का, इंसानियत की आजादी का सवाल है।
वो पाठकों से कहते हैं अपने पूर्वाग्रहों को, पुरानी सोच को एक तरफ रखो।
हाँ, बस तर्क और कॉमन सेंस से सोचो, सहज बुद्धि से।
वो एक तरह से स्टेज सेट कर रहे हैं, फिर पहले हिस्से में वो एक बहुत बुनियादी लेकिन क्रांतिकारी बात करते हैं,
समाज और सरकार का फर्क।
हाँ, वो कहते हैं समाज तो हमारी जरूरतों से बनता है, लोगों को जोड़ता है, वो अच्छा है, एक आशीर्वाद है,
लेकिन सरकार वो हमारी बुराइयों की वजह से जरूरी होती है।
एक जरूरी बुराई जिसका काम सिर्फ हमारी आजादी, हमारी संपत्ति की रक्षा करना है, हमें आपस में लड़ने से रोकना है।
इसलिए सबसे अच्छी सरकार वो है जो सबसे सीधी सादी हो, कम से कम दखल दे।
इसे समझाने के लिए वो एक द्वीप वाली मिसाल देते हैं जो बहुत अच्छी है।
हाँ, वो बड़ी दिलचस्प है।
सोचिए, कुछ लोग एक वीरान द्वीप पर बसते हैं। पहले तो मिलजुल के रहेंगे, समाज बनेगा
जरूरत के हिसाब से।
हाँ, पर जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे मुश्किलें आएंगी, झगड़े होंगे, तब उन्हें नियम बनाने पड़ेंगे
और उन नियमों को लागू करने के लिए कुछ लोगों को चुनना पड़ेगा, यानी सरकार।
बस यही पेन के लिए आदर्श सरकार है, सीधी सरल, लोगों के प्रति जवाबदेह।
और फिर इसी आदर्श के सामने वो रखते हैं उस वक्त के अंग्रेजी संविधान को,
जिसे वो कहते हैं कि ये बहुत जटिल है और भ्रष्ट भी।
वो कहते हैं ये जो राजा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स का मिक्सचर है, ये सब दिखावा है।
असल में ये बहुत पेचीदा है और राजा के पास इतनी ज्यादा ताकत है कि कॉमन्स का कंट्रोल बस नाम का है।
वो साफ कह रहे थे सिस्टम काम नहीं कर रहा, इसे बदलना होगा।
और इसके बाद वो सीधा हमला करते हैं ब्रिटिश सिस्टम की जड़ पर।
राजशाही और खानदानी उत्तराधिकार, ये तो मतलब उस जमाने के हिसाब से धमाका था।
बिल्कुल, पेन की शुरुआत ही इस आइडिया से होती है कि भाई कुदरत ने तो सब इंसानों को बराबर बनाया है,
तो फिर ये राजा और प्रजा का भेद क्यों? ये तो बनावटी है, नेचुरल नहीं है।
किसी को सिर्फ इसलिए राज करने का हक कैसे मिल सकता है कि वो किसी खास खानदान में पैदा हुआ है?
और कमाल ये है कि वो सिर्फ तर्क नहीं देते, वो बाइबल का ही इस्तेमाल करते हैं राजशाही के खिलाफ।
हाँ, ये बहुत स्मार्ट मूव था। वो पुराने इसराइल की कहानी सुनाते हैं
कि कैसे लोगों ने भगवान और पैगंबर सैमुअल की मर्जी के खिलाफ राजा मांगा,
और सैमुअल ने उन्हें चेताया था, राजा तुम पर जुल्म करेगा, टैक्स लगाएगा, तुम्हारे बेटों को जंग में भेजेगा।
पेन के लिए तो बाइबल खुद राजशाही को गलत मानती थी, एक तरह की मूर्ति पूजा।
ये सीधा हमला था राजा के दैवीय अधिकार वाले सिद्धांत पर।
और फिर वो आते हैं खानदानी उत्तराधिकार के बेवकूफी पर।
हाँ, वो कहते हैं चलो मान लिया पहला राजा काबिल था, पर क्या गारंटी है कि उसका बेटा, उसका पोता भी काबिल होगा?
ये तो आने वाली पीढ़ियों के साथ नाइंसाफी है, उन्हें अपना शासक चुनने का मौका ही नहीं।
और फिर उनका वो मशहूर कटाक्ष कि ये सिस्टम तो शेर की जगह गधे को गद्दी पर बिठा सकता है।
मतलब योग्यता की कोई वैल्यू नहीं, बस खानदान का नाम।
और अपनी बात साबित करने के लिए वो इंग्लैंड के इतिहास से मिसालें देते हैं, विलियम द कॉन्करर से लेकर,
हाँ, जिसे वो फ्रांसीसी दोगला तक कह देते हैं।
हाँ, अपने जमाने तक के राजाओं के जुल्म, लड़ाइयां, गृह युद्ध, वो दिखाते हैं कि ये खानदानी राज अक्सर बर्बादी लाता है।
उनका मकसद साफ था, लोगों के मन में राजा के लिए जो इज्जत या डर था उसे जड़ से उखाड़ना।
यहाँ तक तो पेन ने सिद्धांत की बातें की। अब तीसरे खंड में अमेरिकी मामलों की मौजूदा हालत, ये पैम्फलेट का दिल है। हाँ, यहाँ वो उन सिद्धांतों को अमेरिका के उस वक्त के संकट पर लागू करते हैं और सुलह की सारी दलीलों को खारिज करते हैं,
जैसे वो जनक देश वाली बात कि ब्रिटेन तो माँ जैसा है,
जंगली जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते, ब्रिटेन ने अपना फायदा देखा है, माँ जैसा बर्ताव नहीं किया।
और अमेरिका में सिर्फ इंग्लैंड से आए लोग थोड़ी है, पूरे यूरोप से है।
फिर वो दलील कि ब्रिटेन हमारी रक्षा करता है।
पेन कहते हैं हाँ, रक्षा करता है, पर अपने मतलब के लिए, अपने व्यापार, अपने साम्राज्य के लिए।
और इसी चक्कर में अमेरिका बेवजह ब्रिटेन की यूरोपीय लड़ाइयों में घिसटता रहा है।
आर्थिक तरक्की की बात पर भी वो कहते हैं कि अमेरिका की खुशहाली अपने दम पर है, ब्रिटेन की वजह से नहीं।
बल्कि आजाद होकर तो अमेरिका और तरक्की करेगा जब पूरी दुनिया से व्यापार करेगा।
और फिर सबसे अहम बात, पेन कहते हैं अब सुलह का रास्ता बचा ही नहीं।
हाँ, लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में खून बह चुका है, भरोसा टूट चुका है।
अब कोई भी समझौता बस वक्ती होगा, आगे चलकर फिर लड़ाई होगी, अब सिर्फ आगे बढ़ना है
आजादी की तरफ। और वो सिर्फ ये नहीं बताते कि क्या गलत है, वो एक रास्ता भी दिखाते हैं, एक आजाद अमेरिका का नक्शा खींचते हैं।
एक महाद्वीपीय गणराज्य, चुनी हुई कांग्रेस, बदलते हुए अध्यक्ष, एक संविधान
जो लोगों की आजादी, संपत्ति, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दे, सरकार लोगों की मर्जी से चले, राजा की मर्जी से नहीं।
ये एक उम्मीद थी, एक बेहतर भविष्य का सपना।
लेकिन सिर्फ सपने से तो काम नहीं चलता, लोगों के मन में डर था कि हम जीत सकते हैं।
हाँ, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य से, इसी डर को पेन चौथे हिस्से अमेरिका की मौजूदा क्षमता में एड्रेस करते हैं।
और वो बड़े प्रैक्टिकल तरीके से जवाब देते हैं। देखो, अमेरिका पर कर्जा नहीं है, ब्रिटेन कर्ज में डूबा है।
हमारे पास कुदरती दौलत है, खासकर लकड़ी, जिससे जहाज बन सकते हैं।
हमें अपनी जमीन की, तटों की जानकारी है, ये लड़ाई में बहुत काम आएगा।
वो लोगों की संख्या और एकता की भी बात करते हैं कि आबादी काफी है लड़ने के लिए।
और आजादी का मकसद हमें एकजुट रखेगा, ये साझा दुश्मन, साझा लक्ष्य, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
और फिर वो जोर देकर कहते हैं यही सही वक्त है।
हाँ, समय ने हमें ढूंढ लिया है, वो लिखते हैं, अगर अभी नहीं तो शायद कभी नहीं।
हो सकता है बाद में अमेरिका में फूट पड़ जाए या ब्रिटेन और मजबूत हो जाए, ये मौका जाने नहीं देना चाहिए।
ये डर भगाने और हिम्मत जगाने वाली पुकार थी, उठो लड़ो अभी।
बाद में एक परिशिष्ट भी जोड़ा गया था ना?
हाँ, बाद के एडिशंस में। उसमें राजा जॉर्ज के भाषण और वफादारों की दलीलों का जवाब था। पेन ने फिर अपनी बातें दोहराई,
राजा को जालिम उदास फिरौन तक कह डाला
और जोर दिया कि आजादी ही एकमात्र इज्जतदार और सही रास्ता है।
तो अगर हम कॉमन सेंस के निचोड़ को देखें, इसके मुख्य संदेशों को, तो क्या बातें निकल कर आती हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली और सबसे क्रांतिकारी बात तो यही है, राजशाही और खानदानी हुकूमत नाजायज है।
हाँ, वो सिर्फ राजा की नीतियों पर नहीं,
बिल्कुल,
राजा के आइडिया पर ही सवाल उठा रहे थे।
बिल्कुल, तर्क और धर्म दोनों से साबित किया कि पैदाइश के आधार पर शासन का हक नहीं मिलना चाहिए।
दूसरी बड़ी बात, समाज और सरकार में फर्क।
समाज अच्छा है, जरूरी है, सरकार एक जरूरी बुराई है
जिसे हमेशा अपने होने का कारण साबित करना पड़ता है। अगर वो लोगों का भला न करे तो उसे बदल देना चाहिए। ये सोच आज भी कितनी रेलेवेंट है ना?
बिल्कुल, हम आज भी अपनी सरकारों से यही उम्मीद करते हैं या करनी चाहिए।
तीसरी अहम बात, आजादी अब जरूरी है और होकर रहेगी। पेन वो अर्जेंसी क्रिएट करते हैं।
हाँ, कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं, भौगोलिक आर्थिक राजनैतिक हर लिहाज से एक छोटे टापू का बड़े महाद्वीप पर राज करना बेतुका है।
और एक्शन का टाइम अभी है, महाद्वीपीय संघ का बीच काल।
चौथी बात, वो अमेरिका को दुनिया के लिए आजादी का प्रतीक बनाना।
हाँ, ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका की नहीं पूरी इंसानियत की है। अमेरिका को मानव जाति के लिए पनाहगाह बनना है।
ये अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म की शुरुआती झलक।
पांचवा संदेश तो नाम में ही है, कॉमन सेंस।
कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, आम आदमी की समझ, उसका तर्क, बातें ऐसी कहीं जैसे वो साफ जाहिर हों।
आम लोगों की सहज बुद्धि पर भरोसा।
और आखिरी बात, आगे बढ़ने के लिए पुराने परंपराओं को छोड़ने का साहस।
वो चुनौती देते हैं कि ब्रिटेन के लिए अपने पुराने सम्मान पर सवाल उठाओ।
उनकी वो लाइन कि किसी चीज को गलत न मानने की लंबी आदत
उसे सही होने का झूठा दिखावा दे देती है। ये हमें सिखाती है कि सिर्फ इसलिए चीजों को न मानो क्योंकि वो हमेशा से हैं, सवाल पूछो।
अपने समाज की रूढ़ियों पर भी सवाल उठाने की हिम्मत देती है ये बात।
इस छोटी सी किताब में कुछ पंक्तियां तो ऐसी हैं जो आज भी याद रह जाती हैं।
हाँ, जैसे वो सरकार और समाज वाली, समाज हर हाल में एक आशीर्वाद है लेकिन सरकार अपनी सबसे अच्छी हालत में भी एक जरूरी बुराई है और अपनी सबसे बुरी हालत में एक नाकाबिले बर्दाश्त बुराई।
ये सरकार को उसकी सही जगह दिखाती है, एक नौकर, मालिक नहीं।
और परंपरा पर वो टिप्पणी, किसी चीज को गलत न मानने की लंबी आदत उसे सही होने का सतही रूप दे देती है लेकिन हंगामा जल्दी शांत हो जाता है, समय तर्क से ज्यादा अनुयायी बनाता है।
कितनी सटीक बात है, बदलाव का विरोध होता है पर समय और तर्क अपना रास्ता बना लेते हैं।
फिर वो लाइन जो अमरीकी क्रांति को ग्लोबल बनाती है, अमेरिका का मुद्दा काफी हद तक पूरी मानव जाति का मुद्दा है।
ये सिर्फ टैक्स की लड़ाई नहीं थी, ये इंसानी हक की लड़ाई थी।
और मेरी पसंदीदा, जिसमें जबरदस्त उम्मीद है, हमारे पास दुनिया को फिर से शुरू करने की शक्ति है।
सोचिए जरा, ये सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, ये एक नई शुरुआत, एक नया समाज, एक नई दुनिया बनाने का ऐलान था। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि पेन की ये बातें आज हमारे किस काम की हैं? 250 साल पुरानी किताब से हम आज क्या सीख सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहली सीख सवाल उठाना सीखे।
हाँ,
चाहे सरकार हो, समाज की परंपरा हो, दफ्तर का नियम हो, पूछें क्यों, क्या ये सही है, क्या ये जरूरी है।
दूसरी चीज, अपनी बात साफ और सीधी कहें।
बिल्कुल, कॉमन सेंस की कामयाबी का राज यही था, आसान भाषा, जोश, भारी भरकम शब्दों से बचकर दिल से निकली बात कहें।
तीसरा, बुनियादी उसूलों से सोचें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग।
हाँ, पेन ने ये नहीं देखा कि कानून क्या कहता है, उन्होंने पूछा सरकार क्यों होनी चाहिए, समाज क्या है, जब मुश्किल में हो तो पूछें यहां सबसे बुनियादी सच्चाई क्या है, जीरो से सोचते तो क्या करते।
चौथा, सिद्धांतों के लिए हिम्मत दिखाएं।
कॉमन सेंस सिर्फ सोचने की किताब नहीं थी, एक्शन का कॉल थी, खतरा उठाकर, जब सही रास्ता पता चले तो डर को पीछे छोड़कर कदम उठाना पड़ता है,
खासकर जब बात न्याय, आजादी, सच्चाई जैसे उसूलों की हो।
और पांचवा, जो मुझे बहुत जरूरी लगता है, बदलाव की राह में जो साइकोलॉजिकल रुकावटें आती हैं उन्हें समझना। पेन का वो कहना कि गलत ना मानने की लंबी आदत, ये दिखाता है कि उन्हें इंसानी फितरत की समझ थी, लोगों को बदलने के लिए सिर्फ तर्क काफी नहीं, उनके जज्बातों को भी समझना होता है।
ये किसी भी लीडर के लिए या हम सबके लिए ही एक जरूरी सबक है।
तो कुल मिलाकर कॉमन सेंस से सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि विचारों में जबरदस्त ताकत होती है।
हाँ, एक सही ढंग से पेश किया गया विचार इतिहास बदल सकता है। ये याद दिलाता है कि असली ताकत लोगों में है, सरकारें उन्हीं से वैधता पाती हैं।
और अगर सरकार जालिम बन जाए तो उसे बदलना लोगों का हक भी है और फर्ज भी।
और ये भी कि लोकतंत्र से वोट डालना नहीं है, ये आम लोगों को जगाना, सोचने पर मजबूर करना,
उन्हें अपने हक के लिए खड़े होने का हौसला देना है। कॉमन सेंस सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज़ादी, तर्क और उस इनकलाबी जज्बे का ऐलान है
जो हर उस इंसान में है जो खुद सोचने और पेन के शब्दों में दुनिया को फिर से शुरू करने की हिम्मत रखता है।
बिल्कुल।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।